ये किसी साहब ने पिछले इतवार की गुफ्तगू हवाला देते हुए लिखा है कि आपने पिछले इतवार फरमाया था कि बाबा नूर वाले तीसरी शख्सियत थी जिन्होंने मुझे मेरी खबर दी थी, वो क्या बात थी, मेहरबानी फरमा के बयान कर दें तफसील से। इसमें एक चीज उमिट कर गए जिन साहब ने यह सवाल लिखा है, मैंने ये अर्ज नहीं किया था कि मुझे मेरी खबर दी थी, बात मैंने ये अर्ज की थी कि मेरी इस राह की मुझे खबर दी थी, वरना मुझे अपनी खबर तो बहुत देर से थी, जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से खबर थी कि मैं दुनिया में आ चुका। वो किस्सा ये था कि एक जमाने में जब मैंने करियर का स्टार्ट लिया तो मुझे पहली जॉब स्वी गैस में मिली थी, जब तालीम मुकम्मल की और मैंने जॉब की तलाश की तो स्वी गैस में जॉब मिली और स्वी गैस वालों ने मुझे मुल्तान फेंक दिया। ये वो दौर था जब मैं अभी 22 साल का था और 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे शाम को पढ़ा करता था। मुर्शद साहब थे नहीं, गाइड कोई करता नहीं था, जो जी चाहा पढ़ना शुरू कर दिया। और तो और मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वजीफा भी पढ़ा, बहुत देर पढ़ता रहा। उसके नतीजे में बहुत सी चीजें मुझे दिखाई देने लगी जिनसे मैं कंफ्यूज होता था कि यह है क्या। मिसाल के तौर पे वहां मुल्तान में भी मैंने इंडिपेंडेंट घर लिया हुआ था, छोटा सा घर था, 3-बेडरूम हाउस, लेकिन मेरे अपने इस्तेमाल में तो एक ही बेडरूम रहता था, तो बाकी 2 बेडरूम फालतू थे। तो होता यह था कि मुल्तान स्टेशन पर स्वी गैस के दूसरे स्टेशन से जो लोग आते थे टेम्परेरी ड्यूटी पे या ट्रांसफर होके या टूर्स पे, तो जब तक उन्हें ऑल्टरनेट रेजिडेंस नहीं मिलती थी वो वहां ठहर जाया करते थे। तो एक दिन रात को मैं अपने मामूलात से फारिग होके आया, गर्मियां थी तो उस जमाने में एयर कंडीशनर्स का तो रिवाज था नहीं और ना अफोर्ड करता था कोई, तो ओपन जगह पर घर में बेड लगा दिए जाते थे। तो मेरे यहां भी वो बेड लगे थे, मेरा अपना बेड बिल्कुल एक आखिरी सिरे पर था और उससे पहले शायद 5 या 6 बेड और लगे हुए थे। तो उस पर मुख्तलिफ जगहों से आए हुए स्वी गैस के मेरे कॉलीग लेटे थे। तो रात को आके मैं पढ़ता हुआ दरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता लेट गया तो सडनली ये देखा कि वहां जो घर थे उनकी बैक एक दूसरे से मिलती नहीं थी, बल्कि गलियां रखी हुई थी दरमियान में, और वो वाली बाउंड्री वॉल हर घर की तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। तो कोई साहब उस गली में से घर में एंटर हुए मेरे और उन्होंने 8 फुट की बाउंड्री वॉल इस तरह से क्रॉस की जैसे हम लोग ईंट के ऊपर से गुजरते हैं, और वो कॉरिडोर में से होते हुए फ्रंट डोर में से बाहर निकल गए। वो कद इतना लंबा था उनका और जिस तरह से वो आए तो बाकी हजरात ने चीखें मारी और छलांग लगा के मेरे ऊपर आके गिरे, और वो ये कहे जा रहे हैं कि इसको हटाओ इसको हटाओ। वो मेरा तो दम घुट रहा था इस बोझ के नीचे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे ऊपर से उठेंगे तो मैं हटाऊंगा किसी को। तो ऐसी चीजें वहां दिखाई देती थी। सुनाने का मतलब ये था कि इस किस्म की लायानी किस्म की बातें मैं देखता रहता था। इसी दौरान एक साहब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ गए जिनका चेहरा अजीब गरीब था और वो अपनी उम्र से कोई 4 गुना ज्यादा बड़े दिखाई देते थे। फेस से अंदाजा होता था जैसे कोई 80-85 साल के आदमी हैं, दर हकीकत वो थे 25-26 साल के। तो मालूम ये हुआ कि वो इसी राह पर थे, लेकिन जब काफी हद तक आगे चले गए तो उनके दिल में दुनिया की लालच पैदा हो गई कि मुझे जब कश्फ हासिल हो जाएगा तो मैं उस कश्फ के जरिए रेस के घोड़ों के नंबर मालूम कर लूंगा और यूं दौलत कमाऊंगा, जमीन के नीचे छुपी हुई दौलत ले लूंगा और यूं दौलत कमा लूंगा। तो उससे उनको मार पड़ गई और उनका फेस डिफॉर्म हो गया। लेकिन उनसे मुझे बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जिस राह से वो गुजरे हुए थे उस राह की खबर देते थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुल्तान में एक साहब हैं जो बाबा तलवार वाले कहलाते हैं, तो उनके पास आप जाइए। तो मैं उनको लेके चला गया। तो पहली बार उनके पास गया तो बाबा तलवार वाले ने बात ही नहीं की मेरे साथ, बैठ के चला आया। दूसरी बार गया तो भी उन्होंने बात नहीं की, मैं चला आया। तीसरी बार गया तो उनके दरवाजे के बाहर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, तो ऊपर का होंठ अंदर की जानिब से कट गया सारा, तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो जो होंठ कटा मेरा, उसका गोश्त लटका हुआ मुझे हंसने, क्योंकि जिस अंदाज में मैं गिरा था उस पर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, वो बड़ा फनी तरीके से गिरा मैं, तो मैं हंसता था तो वो लटकता हुआ गोश्त मेरे दांतों में फंसता था, तो मैंने दांतों से कुतर के वो फेंक दिया, उससे और ब्लीडिंग बढ़ गई। तो उससे तमाम शर्ट मेरी सामने से सुर्ख हो गई खून से। तो बजाय डॉक्टर के जाने के मैं उसी हाल में बाबा तलवार वाले के पास चला गया। तो वो बैठे हुए दो खवातीन के लिए दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा उस हाल में कि फेस भी खून से भरा हुआ है, शर्ट भी, तो मुझे कहने लगे कि पूर्वी जबान बोलते थे वो, किसी से भिड़े हो क्या, मतलब ये किसी से लड़ाई हुई झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा नहीं हजूर, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन आपकी तरफ मैं आया तो आपके दरवाजे पर ये सब हुआ है। बाद में पता लगा कि वो तो सिविल सर्वेंट थे पुराने अंग्रेज के जमाने के, बहुत जहीन आदमी थे, तो मेरी बात में जो इन बिटवीन द लाइंस मैंने कही थी बात, वो भांप गए। तो जरा सा उन्होंने यूं आंखें खोल के मुझे देखा तो उसे मुझे समझ आ गई कि जो मैंने इन बिटवीन द लाइंस कही है बात, वो ही पिक कर गए हैं। तो कहने लगे अच्छा फिर कैसे आए। मैं कुछ नहीं, ऐसे ही सलाम करने आया था। कि नहीं कोई काम है तो बता दो। मैं काम क्या होगा मुझे, मैं तो ऐसे ही सलाम करने आ गया था आपको बस। कहने फिर भी कुछ काम हो बोलो। तो मैंने चलिए फिर आप यूं कीजिए, दुआ कर दीजिए मेरे लिए। पूछा उन्होंने क्या दुआ कर दूं, तो मैंने कहा ये दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो थोड़ी देर वो मराकबे में गए और सर उठाया तो एक जुमला सिर्फ बोला, कहने लगे जाओ रब तुमसे राजी हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात पर कि रब राजी हो गया मुझसे, चला आया। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे इस राह की खबर दी कि मुझे इस राह पर जाना है। अगरचे इस जुमले को उस वक्त मैं नहीं समझा था कि जाओ तुमसे रब राजी हो गया। इसी दौरान मैं लाहौर आ गया, प्रिंस आगा खान को ज्वाइन कर लिया, उनकी अदारा था एक उसमें, वहां से फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मैं चला गया। तो 76 में मुझे किसी और अदारे में भेजा गया मिनिस्ट्री से। तो वहां एक साथ थे, यूनिफॉर्म में थे, तो उनको लेके मैं हर इतवार, उन दिनों इतवार की छुट्टी होती थी, किसी ना किसी मज़ार पे चला जाता था। तो एक दिन वो साहब कहने लगे कि सर आप इतनी जगहों पे मुझे ले गए, आज मैं भी आपको किसी जगह ले जाता हूँ। हमने कहा चलिए। तो मुझे सालार वाली ले गए बाबा सूफी बरकत साहब, उनसे मिले तो सूफी साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई मेरे ऊपर, तो कहने लगे चलिए आइए खाना खाते हैं। और वो एक प्याला था मिट्टी का, वो और कोई आधी इंच मोटी रोटी पकी हुई, जो आधी कच्ची आधी पक्की। तो इतनी देर में एक साहब आए, बाल्टी में उबले हुए टींडे थे जिसमें मिर्चें लेदा तैर रही थी, तो उन्होंने वो मेरे सामने रखे प्याले में भी डाल दी। अब मुझसे खाया नहीं जाए, जिंदगी में कुछ बुरी आदत अब तक चिमटी हुई है कि रोटी इंतहाई पतली खाता हूं मैं, वो आधा इंच मोटी रोटी वो कैसे हलक से नीचे उतरे। तो उसको सामने रख के बैठा रहा, उन्होंने लतीफे मुझे सुनाते रहे, सूफी साहब इधर उधर की बातें करते रहे। सडनली खादिम को बुलाया और कहने लगे कि वही शाह साहब के सामने से उठा लो, ये खाना शाह साहब के हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो उठ गया। उसके बाद मैंने इजाजत मांगी कि अभी इजाजत है मैं चलूं। तो वो खड़े हो गए और खड़े होकर मुझे उन्होंने कहा कि शाह साहब कोई खिदमत बताइए। मैं कहा क्यों शर्मिंदा करते हैं? तो कहने लगे नहीं फिर भी कुछ तो बताइए। तो मैंने कहा नहीं बड़ी मेहरबानी हजूर आपकी, नहीं नहीं कोई खिदमत बताएंगे आप बताइए। तो मैंने कहा चलिए आप दुआ फरमा दीजिए। तो क्या? तो मैंने वही दुआ फिर कही कि दुआ फरमाइए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो कुछ देर के बाद जवाब दिया कहेंगे रब आपसे राजी हो गया। ये दूसरे आदमी थे जिन्होंने वही जुमला दोहराया, उन्हीं अल्फाज में दोहराया। यही फौजी अफसर दो तीन संडेज के बाद मुझे कहने लगे कि सर एक जगह और आपको ले चलते हैं। मैंने कहा चलो। तो ये बाबा नूर वाले के पास ले गए, वहां मुलाकात हुई उनसे। तो उन्होंने पूछा कि क्या दुआ कोई करानी है? तो मैंने कहा ये दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो मैं हैरान ये हुआ कि इन्होंने भी एग्जैक्टली वही जुमला कहा कि शाह साहब अल्लाह आपसे राजी हो गया। तो जब ये इस राह पर आया मैं और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी सब, तो ये मुझ पर राज खुला कि वो जो जुमला था कि रब तुमसे राजी हो गया, दरहकीकत बात ये है कि वो जब रब किसी से राजी होता है उससे खुश हो जाता है तो अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमाता है, रब ताला उसे इल्म अता फरमा देता है। और जब इल्म मिलता है तो फिर दीन भी समझ में आता है और दूसरे उकदे भी खुलते हैं। तो वो जुमला ये था कि रब तुमसे राजी हो गया। वो ये नहीं था कि उन्होंने मुझे मेरी खबर दी थी कि मैं दुनिया में आ गया, क्योंकि अगर उस वक्त वो खबर देते मुझे मेरी तो बहुत लेट होता, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक काफी उम्र का हो चुका था। अभी किसी ने सवाल पूछा है कि क्या किसी गरीब आदमी को उधार देना जायज है जबकि वो बता रहा हो कि ये रकम उसने बतौर रिश्वत देकर मुलाजमत पे लगना है। अब इसके अंदर दो तीन व्यू पॉइंट हो सकते हैं। मेरा अपना जाती व्यू पॉइंट शायद वो पसंद ना आए आप हजरात को। मेरे यहां तो ये है कि मैंने कभी किसी को उधार नहीं दिया। मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया कि मैं बुनियादी तौर पे निहायत कंजूस इंसान हूं, हद से बढ़ा हुआ कंजूस, तो मैं किसी को उधार नहीं देता। लेकिन जब कोई शख्स आ जाए और दस्ते सवाल दराज कर दे कि वो जरूरतमंद है, तो एक हदीस मुझे वहां याद आने लगती है कि जब कोई तुम्हारे सामने दस्ते सवाल दराज करे तो उसको खाली न लौटाओ, बेशक उसके हाथ पर एक चुटकी मिट्टी की रख दो। तो जब कोई शख्स उधार मांगता है तो वो दस्ते सवाल दराज कर रहा होता है। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि उसे खाली हाथ न लौटाया जाए। तो वो जो कुछ उसने मांगा है अगर वो उतना है मेरी जेब में तो उसके हाथ पर रख दिया जाएगा, लेकिन मुंह दूसरी तरफ करके कि मैं उसको देख ना पाऊं, ताकि वो शर्मिंदा ना हो कि मैं उसे देख रहा हूं लेते हुए। और दिल में ये सोच लिया जाएगा कि ये मांग तो उधार रहा है लेकिन मैं इसे उधार नहीं दे रहा। अगर अल्लाह ने इसको तौफीक बख्श दी और इसके वसायल ऐसे हो गए कि ये लौटा सके तो ठीक है लौटा देगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये न लौटा सका तो मैंने इसे मुआफ कर दिया है, जो कुछ दिया ये इसका हो गया। तो यूं मैं उधार कभी किसी को नहीं देता। उसका एक फायदा होता है कि न कभी किसी को उधार दिया, न मुझे याद रहा कि कोई मुझसे कुछ ले गया था। और दूसरी बड़ी बात यह है, वो ऐसा नहीं कि मैं कोई नेक आदमी हूं जो उसको देते वक्त उधर देखता नहीं, वो भी मैं अपनी खुदगर्जी ही में नहीं देखता किसी को, कि न मैं किसी को देखूं कि कौन मुझसे क्या ले गया, न मुझे याद रहे कि फलां साहब ये कुछ ले गए थे मुझसे। तो जहां कोई ले गया वो वहीं दिल से उतर गई, बात जहन से महव हो गई कि किसी ने कुछ लिया था। नतीजा ये है कि मुझे इंतजार नहीं होता कि कोई मुझे वापस करेगा आके, न याद रहता है न। और अल्लाह ताला के भी मामलात अजीबोगरीब हैं। ये इस ईद पर एक अजीब किस्सा पेश आया जिसको मैं एंजॉय करता हूं। मैं और मेरा बेटा, हम अकेले घर पे बैठे थे, तो हम दोनों गप्पे मार रहे थे। एक साहब तशरीफ लाए जिन्हें न मैं पहचानता हूं न मैं जानता ही हूं उन्हें। उन्होंने एक बड़ा मोटा बंडल निकाला और निकाल के कहने लगे कि शाह साहब मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत लेट हो गया। तो मैंने कुछ साल पहले आपसे कुछ कर्ज लिया था, ये लौटाने आया हूं। तो मैं उसका मुंह देखता रहा, तो मैंने कहा कि भाई आपने कब मुझसे लिया उधार, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, आप हैं कौन? तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उस वक्त आप फला इंडस्ट्रियल ग्रुप में काम किया करते थे और ऑफिस में मैं आया था और ये मेरी आपकी जान पहचान थी, तो ये मैं ले गया था। तो मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं कि आप ले गए थे, तो जो चीज मुझे याद नहीं कि आप मुझसे ले गए थे वो मेरी नहीं हो सकती, इसलिए आप इसे ले जाइए, मैं वापस नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने दिए थे आपको। तो वो साहब बड़े बजीद हुए, उन्होंने कहा साहब क्यों आप मुझे अजाब में डालना चाहते हैं, ये कर्ज था तो कल को मैं देनदार हूंगा, तो आपको याद है या नहीं है, लेकिन रकम ये आपकी है, आप ले लीजिए। चलिए आप रख दीजिए यहाँ टेबल पे, मैं पकड़ूंगा नहीं आपके हाथ से, यहाँ रख दें टेबल पे आप। तो वो उन्होंने बंडल वहां रख दिया, खासा हैवी था, चल दिए। तो अब मैं उसके जाने के बाद मैंने बेटे से कहा कि यार ये कुछ किस्सा समझ में नहीं आया, ये रकम मेरी नहीं है, ये क्यों आई मेरे पास अब ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरी नहीं है रकम। तो अभी हम बैठे बात कर रहे थे तो एक साहब तशरीफ लाए जो किसी जगह पर लोगों को उनकी कारों में कुछ सामान जैसे वो जाते हैं खाने पीने का प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनको जवाब में टिप मिल जाती। मैं भी वहां जाता हूं तो मुझे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं गाड़ी में, और बहुत अरसे से मैं उसे देख रहा हूं, निहायत ईमानदार और खुददार इंसान है। आउट ऑफ ब्लू वो चला आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने बताया, कैसे आ गए? उन्होंने कहा जी बस दो तीन दिन लगे लेकिन तलाश कर लिया मैंने। तो मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? तो उसने कहा कि साहब कोई अपनी जरूरत बताई, कि जरूरत आन पड़ी है मुझे और मुझे 2 लाख रुपए चाहिए फौरन। तो मैंने बेटे को देखा और मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं मालूम इस बंडल में कितना पैसा है, ये बस तुम्हारे आने से 15 मिनट पहले ही अल्लाह ने भेजा और ये तुम्हारा है, क्योंकि मैं बेटे से कह रहा था कि ये रकम मेरी नहीं है, तो ये उठाओ चले जाओ, अब तुम्हारी किस्मत इसमें 2 से ज्यादा निकले या 2 से कम, जो कुछ भी है ये तुम्हारा है, ले जाओ। तो उधार न देने के पीछे एक वजह यह भी है कि जो कुछ मेरी जेब में है वो दरहकीकत मेरा नहीं है, उसमें मेरा हिस्सा सिर्फ उतना है जितना मैं अपनी जायज जरूरियात पर या अपनी फैमिली की जायज जरूरियात पर खर्च कर सकता हूं, और जो कोई लेने आया है तो जो कुछ मेरी जेब में पड़ा रह गया है वो उसका हिस्सा है जो वसूल करने आ गया मेरी कमाई से। तो जब है ही वो उसका हिस्सा तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं किसी को उधार दूं, वो तो अपना हिस्सा लेके जा रहा है, वो उसका हक है वो ले जाए, बल्कि मुझे उसका मशकूर होना चाहिए कि अपना हक अज खुद आके मुझसे ले गया, मुझे ये तकलीफ नहीं हुई कि मैं उसे ढूंढ कर दूं, तो उसने मुझ पर एहसान किया है। बाकी वो उसे कहां खर्च करना चाहता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो यकीनन गलती हो सकती है, मेरे रब ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि जो रिस्क मैं तुम्हें अता फरमा रहा हूं उससे तुम शराब पीते हो रोजाना रात को, तुम जुआ खेलने जाते हो कैसीनोज में, तुम ख्वातीन पर खर्च कर देते हो, मुझसे तो मेरे रब ने कभी नहीं पूछा कि जो रिस्क मैं तुम्हें अता करता हूं तुम उन्हें हराम जगहों पर खर्च कर देते हो। अगर रब कहीं अल्लाह मुआफ फरमाए उस वक्त से मुझे वो वक्त कभी ना आए कि कभी वो देखने पे आया कि मैंने उसके अता करदा रिस्क को कहां खर्च किया, तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। मेरा तो हक ही कोई नहीं है, न मेरा कोई इस्तेहकाक है, न मेरी कोई काबिलियत है, न मेरी कोई मेहनत है, और ना मैं उस पैसे को देखभाल के खर्च करता हूं। तो जब मेरा रब मुझे रिस्क अता फरमा रहा है बगैर ये देखे कि मैं हकदार हूं या नहीं हूं, न वो ये देखता है कि मैं इसे कहां खर्च करता हूं, तो मुझे क्या हक है कि मैं अपने रब के अता करदा रिस्क से देते वक्त ये देखूं कि ये कहां खर्च करेगा। मुझे तो सुन्नत रब पर अमल करना है कि उसका रिस्क है जो उसने मुझे अता फरमाया है अपने खजाने से, उसके एक बंदे ने मुझसे मांगा है, वो उसे कहां खर्च करता है ये उसका प्रेरोगेटिव है, ये उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि मेरे रब का एक बंदा आया है मेरे पास, और मेरे पास मेरे रब का जो उसका भी रब है उसका अता करदा रिस्क है, ले जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये मेरा कंसेप्ट है, हो सकता गलत हो, लेकिन मैं तो आपको वही जवाब दूंगा जो मैं करता हूं। तो भाई हमारा क्या मकाम है कि हम ये देखें कि किसने हमसे क्या मांगा, कहां खर्च करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। हम तो कस्टोडियंस हैं, जैसे बैंक वाला है, बैंक में आपका पैसा पड़ा है, आप उसे कैश कराने गए हैं, वो ये तो नहीं देखता कि आप उसको कैसीनो में जाके खर्च करेंगे या किसी पब में जाके उसको खर्च कराएंगे, वो तो चुपचाप दे देता है। तो हमारे पास जो हमारी जरूरियात से फालतू पैसा है वो तो अल्लाह का है, उसके बंदों का है, कोई आके ले जाए हमसे। ये एक सवाल है कि गौस साहब की क्या निशानियां होती हैं और उनके जिम्मे क्या फराइज होते हैं। इस वक्त के गौस साहब दुनिया के किस हिस्से या मुल्क में फराइज अदा कर रहे हैं, इरशाद फरमाइएगा। सब बात यह है कि एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर साइकिल भी नहीं चलाई, आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि हवाई जहाज स्टॉल कर जाए तो उसको स्टॉल से रिकवर कैसे किया जाएगा, कि उसके फ्लैप और रडर्स एक वक्त में अप्लाई किए जाएंगे और उसकी जॉयस्टिक पुल की जाएगी, उसको पुल अप किया जाएगा। भाई ऐसे आदमी को, मुझको, जो साइकिल भी नहीं चलाना जानता, वो आपको क्या बताएगा कि हवाई जहाज को स्टॉल से रिकवर कैसे करते हैं। मुझसे तो उस राह की खबर मालूम कीजिए जो मेरी राह है। मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूं, मुझे क्या मालूम कि गौस कौन होता है, उसके फराइज क्या होते हैं, आज का गौस दुनिया में कहां रहता है, किस मुल्क में उसका हेडक्वार्टर है और वो क्या फराइज सर अंजाम दे रहा है। भाई मैं तो माजरा चाहता हूं, ये सवाल मेरे बस का नहीं है, किसी नेक इंसान से मालूम कर लीजिए जो आपको इस सवाल का जवाब दे सके, मेरे बस का नहीं है ये। ये किसी बहुत पक्के उस्ताद के पढ़ाए हुए साहब का सवाल है कि बंदा जब दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर रहा हो तो उसका ख्याल तसव्वुर अल्लाह की तरफ होना चाहिए या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब होना चाहिए, इस मामले में फुकरा हजरात की क्या सुन्नत है। बंदा अगर दुरूद इब्राहिमी के तर्जुमे की तरफ जाए तो बंदा अल्लाह से अर्ज कर रहा होता है, इस मौजू पर तफसीलन बहस की जाए। بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روضہ مبارک کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح جب کوئی بندہ کسی اور درود شریف کا ورد کر رہا ہو تو اس بارے میں کیا عرض ہے؟ صاحب، یہ جو تصور باندھنے کی بات کی ہے، یہ معاملہ بھی در حقیقت توفیق اور اپنی اپنی پہنچ سے تعلق رکھتا ہے، اپنے کنسپٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ رب سے میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک، وہ آقا ہے اور میں اس کا غلام، وہ میرا پالنے والا ہے، میرا محسن ہے رب۔ لیکن وہ اتنا بڑا ہے اور ایسے بلند مقام پر بیٹھا ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہے نہیں، تو میں کسی ایسی ہستی کو پکڑ لوں جس کی رسائی اللہ کے دربار تک ہے اور وہ کبھی خوش ہو کے شاید میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کر دے، تو ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہستی ہے، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے فیس ٹو فیس رب تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، درمیان میں ایک مہین سا پردہ تھا ورنہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے گفتگو کی۔ ایک اور پیغمبر ہیں جن کو ندا آتی رہی کوہ طور پر، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ فیس ٹو فیس گفتگو کر لیتا، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا کہ وہ معراج پر جاتا اور جا کر وہ عرش معلیٰ کی سیر کر لیتا، یہ بھی ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ملا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضور، میں تو یہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا، اب آپ کی شفقت ہے کہ مجھے آپ رب کے حضور پیش کر دیں یا اپنی ذات تک رکھ لیں، تو اگر اپنی ذات تک رکھیں تو بھی میں بہت خوش، رب تک لے جائیں تو میں آپ کا احسان مند، یہ کنسیپٹ ہے اس کے ذہن میں۔ تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا پلو پکڑ کے بیٹھا ہے، درود شریف پڑھتا ہے تو تصور میں اس کے روضہ مبارک ہے، وہ سلام پڑھتا ہے تو روضہ مبارک کا تصور کر کے پڑھتا ہے، عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی نہیں ہے، میرے صرف آپ ہیں، اور آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، یہی عرض کرتا ہے۔ وہاں چونکہ جلال نہیں ہے، وہاں صرف رحمت ہے، وہاں اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی محبت اور رحمت ہے، وہاں کافر کے لیے بھی محبت اور رحمت ہے، تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کر رہا ہے تو وہاں رحمت کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور اس کو رب تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا، فیصلہ آپ کا ہے، تصور رب تعالیٰ کے عرش کا باندھیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ کا، یہ اپنی ہمت کی بات ہے۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو بھائی، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے، اس لیے کہ میری حرکتیں اور میرے گناہ اس قسم کے ہیں کہ رب کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہاں منہ کیا آدمی دکھائے گا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت ہی رحمت ہیں اور وہ گناہ گاروں کو سینے سے لگاتے ہیں، تو یہ آس لے کے ادھر کا رخ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ بھی نظر کرم فرما دیں گے اور میرے تمام تر گناہوں سے صرف نظر کر کے سینے سے لگا لیں گے تو شاید اسی طرح بچ جاؤں گا میں. رب کے یہاں میرے جیسے گناہگار اور راسی اور فاسق و فاجر انسان کا گزر کیا. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی بشرط زندگی.